अमृत है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हुए, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। छोड़ के तेरी चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है। खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है। की जलती धूप से बचने को क्रूस से छाऊं कहां, क्रूस से छाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां।
पापों को धो दे, कर दे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरे पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि पत्रस हमें बता रहा है कि हमें झूठे शिक्षकों से सावधान रहना है। तो इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम इसके द्वारा आपकी सच्चाई को जान सकते हैं, आपकी प्रेम को पहचान सकते हैं। आज इस समय फिर हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं। विनती करते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, प्रभु जी आप उनके मन और दिलों को खोलें ताकि वे आपके वचन को सुनकर समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, झूठी शिक्षाओं से आप उनकी रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं। आप उन्हें भी छुए, चंगाई दे, शांति दे, ताकि भी आपके वचन पर विश्वास करने पाए। आज अपने अध्ययन पर हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, अध्याय 2:3 में पत्रस प्लास्टिक प्रचारकों के बारे में कहता है कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ उनकी प्रेरणा का स्रोत है। वे लोभ के कारण ऐसा स्वांग रचते हैं। जी हाँ, लोभ एक प्रकार से मूर्ति पूजा है। वे पद के लोभी हैं, वे नाम कमाने के लोभी हैं, अधिकतर वे धन के लोभी हैं। मेरे मित्रों, मैं व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मैंने एक बार एक प्रसिद्ध प्रचारक के बारे में पढ़ा। पादरी ने उस प्रचारक का परिचय इस प्रकार से करवाया, यह सज्जन मेरे मन का मनुष्य है क्योंकि वह मेरे समान ही पैसे का लोभी है। वह प्रचारक बोलने में प्रभावी था, सामर्थी था और उसने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया। 45 मिनट तक उसने एक भी बाइबल पद का संदर्भ नहीं दिया, अपना बाइबल पाठ भी नहीं पढ़ा। उसने यदा कदा यहां वहां से 3 या 4 पदों का संदर्भ दिया। उसने 175 बार मैं शब्द का प्रयोग किया। उसने प्रभु यीशु का नाम केवल 11 बार लिया था। वह हास्य कलाकार भी था, क्योंकि हर 2 मिनट में कलीसिया में ठहाका गूंजता था। उसकी पुकार सुनकर 20 युवा सामने आए। क्यों? उन्होंने सुसमाचार तो सुना ही नहीं था। आज हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। आज कलीसिया का सदस्य प्रचार सुनकर न तो सुसमाचार को जानता है और न ही पहचानता है। यह आज के युग की त्रासदी है, सत्यता है और झूठे शिक्षकों की कमी नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब बाइबल शिक्षकों और रेडियो प्रचारकों को परखें, मुझे भी परखें। क्या मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ या नहीं? परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें और अपने को भी जांचें। प्रत्येक परमेश्वर की संतान स्वयं को जांचे कि वह विश्वास में है या नहीं। इसलिए पत्रस कहता है कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, अर्थात वे पैसों के कारण झूठी शिक्षा देंगे। मैं आज सब प्रचार विज्ञापनों से कुड़ता हूँ। जब मैं यात्रा के बाद घर लौटकर आता हूँ, तब अपने पत्रों को छांटता हूँ और छांटते समय कुछ लिफाफों पर संस्थाओं के नाम देखकर ही उन्हें कूड़े में डाल देता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसा करता हूँ। वे मुझसे लाभ उठाना चाहते हैं। मेरे विचार में संस्थाओं को उन्हीं से निवेदन करना चाहिए जो उनके काम में रुचि रखते हैं। कुछ अच्छी संस्थाएं भी हैं और उनके कार्यक्रम भी अच्छे हैं। कुछ बहुत अच्छे रेडियो कार्यक्रम भी हैं, परंतु कुछ संस्थाएं तो केवल विज्ञापन का काम ही करती हैं। झूठे शिक्षक की यही पहचान है कि वह विज्ञापन करता है। वह आपको परमेश्वर का वचन नहीं सुनाता है, वह आपकी सहायता नहीं करता है, वह तो आपसे ही लाभ उठाना चाहता है। आप उसके लिए खाने का कूपन है या कार खरीदने का साधन है। इसलिए पत्रस कहता है, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। ध्यान दीजिए, उनके कारण अनेक जन वरन बाइबल के नायक भी व्याकुल हुए हैं। भजनकार भी सोच सोच कर परेशान था कि दुष्ट पाप करके बच जाते हैं। भजन संहिता 73 में वह लिखता है कि व्याकुल होकर वह परमेश्वर के मंदिर में गया। उसने वहां क्या देखा? उसने वहां जाकर सीखा कि परमेश्वर ही सर्वे सर्वा है और वह दुष्टों को दंड देगा। प्रेरित पौलुस के साथ बार बार दुर्व्यवहार किया जाता था, इससे पौलुस अप्रसन्न था। कारावास अधिकारी उसे चुपचाप मुक्त करना चाहते थे, परंतु वह चाहता था कि उसे रोमी नागरिक होने का सम्मान प्रदान किया जाए। दूसरी ओर पौलुस कहता है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हम जब बदला लेते हैं तो हम परमेश्वर का स्थान लेते हैं। रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। मेरे प्रियो, बदला लेने पर आप विश्वास के मार्ग से भी हट जाते हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप ऐसे निर्बल मनुष्य हैं जिसे जो चाहे वह धक्का दे। इसका अर्थ यह है कि आप बुरा करने वाले से कहें, भाई आपने मेरे साथ बुरा किया है, परंतु मैं आपको परमेश्वर के हाथों छोड़ देता हूँ। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है कि सिकंदर ठठेरे ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, परमेश्वर उसे उसके कर्मों का फल दे। पौलुस ने एक और बुराई करने वाले भाई के विषय कहा था कि उसने उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, पत्रस हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों को दंड अवश्य देगा। एक मुक्त विचारक की मृत्यु पर किसी ने कहा, वह अपने जीवन की अपेक्षा अब अधिक अच्छा है। मैं इस विषय अधिक नहीं कह सकता, परंतु उसे परमेश्वर को लेखा देना होगा। मैं कभी नहीं चाहता कि जब मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा हूं तो वह मुझसे कहे, तूने आलोचना के डर से वचन को जैसा तीक्ष्ण होना था वैसा प्रचार नहीं किया। परमेश्वर मुझे उत्तरदायी ठहराएगा। मुझे मेरी बाइबल शिक्षा का ब्यौरा उसे सुनाना होगा। आपको परमेश्वर को लेखा देना होगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मेरे मित्रों, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों का कुछ भी नहीं करता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, वह करता है। हब्बकूक सोच रहा था कि परमेश्वर इस्राएल के बैरियों का कुछ क्यों नहीं करता है, परंतु उसने देखा कि परमेश्वर उसकी अपेक्षा से अधिक तेज चाल चलता है। वह सो नहीं रहा है। पत्रस पूर्व काल के धर्म भ्रष्टों के तीन उदाहरण देता है। पद चार में पाप करने वाले स्वर्गदूत, यह शैतान के काम का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पद पांच में नूह का युग, यह संसार का परिदृश्य है। तीसरा उदाहरण पद छह में है सदोम और अमोरा को ध्वंस करना, यह शारीरिक लालसा का उदाहरण है। संसार, शरीर और शैतान, हमें इन तीन बैरियों से सावधान रहना है। प्रेम का पक्ष लेने वाला प्रेरित यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री दो अध्याय के पंद्रह पद में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ संसार की वस्तुओं का अर्थ यह नहीं कि सुंदर फूल, पौधे, पहाड़ और समुद्र। उसके कहने का अर्थ है परमेश्वर विरोधी संसार की रीति इससे प्रेम न रखो। पत्रस पहले शैतान की बात करेगा और बताएगा कि पूर्व काल में परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को दंड दिया था। आज शैतान और दुष्ट आत्माओं को बहुत स्थान दिया जाता है। शैतान के बारे में बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं, उनका स्थान है, परंतु हमें सकारात्मक पक्ष पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरा एक संदेश है, ख्रिस्त विरोधी कौन है? मैं अपने संदेश के अंत में कहता हूं कि मैं ख्रिस्त विरोधी के विषय में अधिक नहीं जानता हूं और न ही जानना चाहता हूं। जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं वह केवल प्रभु यीशु है। जी हां, मैं न तो पौलुस को और न ही किसी अन्य धर्मशास्त्र लेखक को जानता हूं जो कहे मैं ख्रिस्त विरोधी के बारे में जानूं। परंतु पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री तीन अध्याय उसके दस पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। यूहन्ना कहता है सत्रह अध्याय के तीन पद में, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र हमें ख्रिस्त विरोधी या शैतान के बारे में सब कुछ जानने के लिए नहीं कहता है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु वह शैतान की युक्तियों के बारे में अनभिज्ञ न रहने की अवश्य ही शिक्षा देता है। हमें उससे सावधान रहना है, परंतु हम उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। दूसरा पत्रस दो अध्याय उसके चार पद में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। बहुत से टीकाकार के विचार में यह उत्पत्ति अध्याय छह की घटनाओं के संदर्भ में है, परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं। उत्पत्ति मनुष्य की वंशावली का उल्लेख करती है। वह उस परिवार की है जिससे प्रभु यीशु को आना था। उस वंश ने सांसारिक मनुष्यों अर्थात कैन की संतानों से विवाह किया। इस संगम से ऐसे पापी जन उत्पन्न हुए कि परमेश्वर को जल प्रलय द्वारा उनका विनाश करना पड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 में इसका विवरण है और मेरे विचार में दूसरा पत्रस का इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो फिर इस पद का संदेश किससे है? धर्मशास्त्र हमें इस विषय कुछ संकेत देता है। यहूदा इसकी चर्चा करता है और प्रकाशित वाक्य में भी कुछ संकेत मिलते हैं। भविष्यद्वक्ता भी हमारे लिए कुछ मार्ग खोलते हैं। मनुष्य तो इस पृथ्वी पर हाल ही का है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले अन्य प्राणी थे। पृथ्वी पर मनुष्य से पूर्व परमेश्वर की योजना क्रियान्वित थी। पृथ्वी पर उस समय बुद्धिजीवी थे। परमेश्वर के सृजित स्वर्गदूतों में से कुछ ने शैतान के साथ परमेश्वर से विद्रोह किया। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आदि काल में भी परमेश्वर से विद्रोह किया गया था और उस विद्रोह का अगुआ शैतान था। उसके कई नाम हैं। वह महान छल करने वाला है। वह आरंभ ही से झूठा है। उसने परमेश्वर से विद्रोह किया और उसके साथ अनेक स्वर्गदूत हो लिए। पत्रस कहता है कि इन विद्रोही स्वर्गदूतों में से कुछ बेड़ियों में बंधे हैं। वे निष्क्रिय हैं, परंतु कुछ अभी सक्रिय हैं और मेरे विचार में वे धर्मशास्त्र में व्यक्त दुष्ट आत्माएं हैं और मेरे विचार में आज अलौकिक प्राणी फिर प्रकट हो रहे हैं। उनके विषय गलत धारणा के कारण मैं इस विषय पर प्रचार करता हूं। अलौकिक संसार में एक सत्य है और आवश्यक नहीं कि आज जो चमत्कार हो रहे हैं वे सब परमेश्वर की ओर से हैं। शैतान के पास भी सामर्थ है। मेरे श्रोता मित्रों, इसे सुन लें कि शैतान के पास भी सामर्थ है। अतः यह पद मनुष्य के पृथ्वी पर आने से पूर्व का वर्णन है, जब शैतान ने परमेश्वर से विद्रोह किया था। लिखा है, नरक में भेजकर। यहां नरक शब्द एक असामान्य शब्द है जो धर्मशास्त्र में अधिक स्थानों में प्रयोग नहीं किया गया है। यह नरक वह नरक नहीं है जिसमें शैतान डाला जाएगा। वह अभी खुला नहीं है और शैतान परमेश्वर की सृष्टि में खुला घूम रहा है। अय्यूब की पुस्तक के अनुसार तो वह परमेश्वर के सामने भी आता है। वह गरजते हुए शेर के समान पृथ्वी पर घूमता है और अवसर खोजता है कि कब किसको फाड़ खाए। यह बात पत्रस ने अपने पहली पत्री में लिखी है। परंतु शैतान के कुछ स्वर्गदूत बंदी बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, यहां पर आगे लिखा है, अंधेरे कुंडों में डाल दिया। नरक को प्रायः अग्नि कुंड माना जाता है, परंतु मेरे विचार में वह वास्तव में अंधकार का स्थान है, क्योंकि आग से प्रकाश उत्पन्न होता है। अतः आग और अंधकार साथ नहीं हो सकते। आप कल्पना कर सकते हैं कि अनंत काल तक संपूर्ण अंधकार में रहना कैसा होगा। आगे हम पढ़ते हैं, न्याय के दिन तक। अभी उनका न्याय नहीं किया गया है, जबकि उन पर दोष लगाया जा चुका है। परमेश्वर ने उन्हें अपराधी तो ठहरा दिया है, परंतु उनका दंड अभी आने वाला है। अतः पत्रस झूठे शिक्षकों के लिए कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें दंड की आज्ञा दे दी है, उनका दंड अवश्य आएगा। इसलिए कोई यह ना सोचे कि वे बच जाएंगे, उनका विनाश ऊंघता नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो विद्रोही स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, क्षमा नहीं किया था। उन्हें अंधेरे कुंड में डाल दिया कि दंड पाने तक वे वहीं बंद रहें। मैं नहीं जानता कि आज आप परमेश्वर के वचन का विद्रोह कर रहे हैं या उसे स्वीकार कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हो, न कि उस अंधेरे कुंड में। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी है, वह सबसे प्रेम करता है, परंतु उसी समय वह पाप को अनदेखा नहीं करता है, वह उसका दंड अवश्य देता है। आइए आज हम परमेश्वर के पास अपने आप को लाएं और प्रभु से कहें कि आप हमारी सहायता करें, ताकि हम विद्रोह नहीं लेकिन उसके साथ चलने वाले बने, उससे प्रेम करने वाले बने, उसके वचन पर विश्वास करने वाले बने। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सुबह शाम दूं मैं सदा यही, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, जो दबा हुआ हो गुनाहों में, तुझसे नजात का जाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही। मैं ही कील पापों का वो मसीह, जो था छिद गया तेरे हाथों